से विराज हो गया अधरों पर, इतना सुंदर उनका सौंदर्य है, उनके ऐसे गुण हैं। और आज तक भी मैं रोज उनको सपने में देखता हूं या देखती हूं, उनसे बातचीत हमारी होती है, तो क्या समझो कुछ भी प्रेम नहीं। जानते यो जानम तू न में बहुत प्रार्थनो मनसो बपसो वैभव अवगोचर। जो कहते हैं कि कृष्ण को मैंने देख लिया, कृष्ण का सब तत्व समझ लिया, वो कुछ नहीं समझे। मैं चारों वेदों को प्रकट करने वाला जो ब्रह्मा हूं, आठ नेत्रों से देखता हूं, चार मस्तिष्क से विचार करता हूं, मैंने तो कुछ नहीं समझा। तो जो ये कहते हैं कि मैं जानता हूं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। यही भक्ति का विचार है। इसलिए ये गोपियां महाभाव की अवस्था में है, इसलिए ये करेंगे कृष्ण तो हमारा प्रेम नहीं हुआ। अरे देखो तो नरेक्षम नरेक्ष कृष्णम नरेक्ष बलित स्वरूपशील सत्वाच तत् देन विविक्त गीतम विद्याभिमान कथया स्मरण स्वारा धस्यत प्रसंग कबरा मुहर बेन। पहले हिरणियों के लिए कहा, हिरणियों के लिए कह रहे हैं। अरे देखो तो ये हिरण होकर के धन्यास मूढ़ मतयो, कल इसकी मैंने व्याख्या थोड़ी सी की थी, संक्षेप में बतलाऊंगा पूरा, इतना नहीं तो एक श्लोक में ही एक दो दिन तीन तीन लग जाएगा। खूब संक्षेप में सूत्र के रूप में बतला रहा हूं, शायद शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने भी बतलाया होगा। कहते हैं कृष्ण निरीक्ष बलितोत् स्वरूप शीलम। देखा भाई धैर्य जैसा हमारा सौभाग्य नहीं होगा, यह संभव बने उनके सामने जाकर के कृष्ण के मुखारबिंदु को देकर के प्रणय की भिक्षा मांगूंगी। इसे जन्म जन्मांतर में हिरण होकर के ही जन्म, ये संभव पर नहीं। हमने तो ऐसा कोई सुकृति नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इतने में देखा आकाश में विमान सब चल रहा है, भाव नेत्र से देख रही है। गोपियों का संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं होता है, अरे साधारण पुरुषों का नहीं होता है, भक्तों का। कृष्ण तो सत्य संकल्प है ना, और गोपियां कृष्ण ही स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में बतलाया नहीं गया गोपियां उनकी निज रूप है, तो उनका संकल्प कैसे वृथा होगा। जो भी संकल्प कर रहे हैं वो ठीक, वो सत्य है, परम सत्य है। देखा जाए आकाश में चारों तरफ में देवताओं विमान में और उनकी पत्नियां विमानों में चढ़ करके कृष्ण की देवी गीत को सुन करके कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सव रूप शीलम। देखा जाए कृष्ण को कैसे देखा, बलितोत्सव। आज बलिताओं का उत्सव हो रहा है, बीच में कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और ऊपर से इनको देख करके विमान से वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवता लोग। किंतु देवताओं का वह सौभाग्य नहीं है जो उनकी पत्नियों का सौभाग्य है। अच्छा ये कैसे, अरे ऐसे जैसे यज्ञ पत्नियों का जो सौभाग्य था उनके पतियों को ये नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। नाग पत्नियों को जो सौभाग्य मिला था उसके पति काली को वो सौभाग्य रहा? नहीं रहा। उसी तरह से बनित स्वरूप शीलम पति लोगों ने देखा और साधारण रूप में देखा, किंतु ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। बंसी भी उनके कानों में गई या नहीं गई, कृष्ण को गोचारण करते हुए थोड़ा सा देखा झलक में। उनकी बंसी की निनाद वेणु का नाद उनके कानों में नहीं गया, किंतु किनकी कानों में गया है? वो आए किस लिए थे? वो नहीं आते, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी पत्नियों के कहने से विमान को लेकर के उनको दिखलाने के लिए ले आए थे, किंतु उनको भक्ति नहीं थी, किंतु इनकी भक्ति थी। तो उन लोगों ने तो देखा नहीं, वो मूर्छित तो नहीं हुए। कृष्ण का वेणुनाद भी उनके कानों में नहीं गया देवताओं के, चित्रकेतु पाख्यान से देखो ना, आयना है चित्रकेतु महाराज, देख रहे कि इंद्र को हुआ, इंद्र ने भगवान का की भक्ति मांगी, जैसा कि चित्रकेतु महाराज ने वृत्रासुर होकर के जो भक्ति मांगी, अजात कक्षा नियो मातरम कदा कहा उन्होंने, अरे दुर्भागा इंद्र, उनको कहा दुर्भागा इंद्र, भगवान से जब मिलेंगे तो कहेंगे बामन भाई हमारा यह जो स्वर्ग राज है इसको सुरक्षित रखिए, भक्ति नहीं मांगेंगे, और कहां इनको देखिए। इसलिए देवताओं को वो चीज सौभाग्य नहीं है, वो भक्ति नहीं है जो इनको है। इसलिए बलितोत्सव रूप शीलम, बलिताओं का उत्सव, बीच में कृष्ण है, उनको देखा, बेणु नाश करते हुए देखा, और देखा क्या कि गोपियों के साथ में विलास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कभी उनके पैरों के जो छिटक जाते हैं ऊपर उसको भी बांध रहे हैं। कृष्ण का यह देख करके और क्या देखा, यह तो उनका भाव देखा, विलास देखा, और रूप कैसा रूप, त्रिजगत को आकर्षण करने वाला कृष्ण का रूप देखा, जिसका असंभव ऐसा रूप न हुआ है न होगा, नारायण का भी रूप नहीं है, श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जनस्य, श्यामस्य बाम बुज बद्ध तनु कदाहम तान इंदिरा रूप भराम भजाम, श्यामस्य, श्याम का कैसा स्वरूप है, नारायण को भी मुग्ध, लक्ष्मी के जो कांत है उनको भी मुग्ध करने वाला रूप है, वो भी मुग्ध हो जाते हैं ऐसा उनका, और उसमें में मूल महा महालक्ष्मी स्वरूपा सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका जी को बाम अंगों में रख करके आलिंगन कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, वो तो त्रिजगत महा आकर्षित वो रूप है, देवियों ने देखा, गोपियां कर रही है भाव नेत्र से ये देख रही है, ऐसा देखते ही उनकी कबरी खुल गई, एकदम मुग्ध हो गई, कपड़े खिसक गए और देखते देखते अपने पतियों की गोद में गिर पड़े, होश नहीं रहा। कृष्णम नृत्य बनतोत्सव रूप शीलम, शीलम माने क्या, यहां पर शील, शीलम शब्द भी, शील भी बहुत गूढ़ रहस्य को प्रकाश करता है, कहीं भी जागती कोई काम नहीं, ऐसा दोनों का, गोपियों का भी शील और कृष्ण का भी, अपराजित राज्य है ना, कोई भी प्राकृत विषय उनको टच नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, इस दर्शन को भी, इस दृश्य को भी दर्शन करना सबके लिए सौभाग्य की बात नहीं है, ये तो गोपियों के लिए ही आस्वादनीय है, उन्हीं के लिए है, उद्धव भी नहीं देख सकते, नारद जी के लिए संभव नहीं है, कोई भी पुरुष रूप में रहने वाला नहीं हो सकता, इसलिए लोग हुआ शंकर जी तो बन गए गोपी, पुरुष उसमें जा ही नहीं सकता, इस स्त्रियों को इस भाव वाली जो सिद्धि लाभ किया है प्रेम से, जो पुरुष लोग हैं उनका भी भाव वही हो गया, गोपियों का जैसा भाव और गोपी जैसी होकर के कृष्ण की लीला में सम्मिलित हो सकती हैं या देख सकती हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए पंछी पादन के समय में कोई भी माताएं नहीं आई, कोई भी पुरुष नहीं आया, सखा लोग तक वहां पर प्रवेश नहीं कर सके, उनकी सेवा में राधा कृष्ण की, किशोर किशोरी जी का, किसी पुरुष का कोई भी अधिकार नहीं, बहुत दूर से कुछ सुबल इत्यादि का कुछ है, मधुमंगल का कुछ है, किंतु लीलाओं के समय में नहीं। इसलिए ये देवियां ने देखा और देख करके मुक्त होकर के उनके गिर गई अपने पतियों की गोद में। कृष्णम नृत्य बनतोत्सव रूप शीलम सुत्वाच तत्पणित बेण विविक्त गीतम आरूढ़ अनंत दिव्यो विमान बताया स्मरणन सारा एकदम काम में मुद काम मैंने गोपियों का प्रेम जो काम है वही प्रेम है एकदम मुक्त होकर के ऊपर गई। और देखो तो इनका कितना सौभाग्य है इन देवताओं की पत्नियों को देवियों का, अरे पति के गोद में वो गिर गई
और पति लोग कह रहे हैं अहो इसका कितना सौभाग्य। हम इनके भावों को तो स्पर्श भी नहीं कर सके, कोई भी ईर्ष्या देश नहीं। और अपने पतियों के साथ में कृष्ण का यह दर्शन करने के लिए आई, पतियों को दर्शन नहीं हुआ, इनको दर्शन हुआ, कितना इनका सौभाग्य है। सखी बतलाओ तो इन्होंने कैसी तपस्या की थी, अब हम ऐसी तपस्या करके दूसरे जन्म में ऐसी देवियों के रूप में हम लोग जन्म ग्रहण कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी हमारे पति लोग अपने साथ में लेकर के कृष्ण के पास में जाएंगे, कहिए चलो चलो जरा देखाई करेंगे। अभी देखो ना, अभी जब पीछे बढ़ना आएगा, कहां जा रही है, टांग तोड़ देंगे, खबरदार यदि घर से निकली तो उसने हां नहीं कुछ कहा और निकल करके चलने लगी, जबरदस्ती पकड़ करके घरों में बंद कर दिए, बंद करके ताला दे करके लठिया लेकर वहीं पर खड़ा हो गया, देखेंगे कैसे निकलती है। अब ये देखो जो कैसे मैं निकलती हूं, निकल गई ना, वो क्या है, गृह ताप भूता अशुभा, कैसा सुनता, जितना उनका शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो गया। जब तक हमारे जीवन में शुभ और अशुभ रहेगा, जागतिक पुण्य और पाप रहेंगे, ये साधक भी कृष्ण को नहीं आगे भजन कर सकता। तो इन सिद्धों की तो बात ही क्या है, किंतु भागवत में तो ये लिखा है, उनका जो शुभ था न, उनका जो अशुभ था वो पाप से द्रवित होकर के समाप्त हो गया, और जो शुभ था उन्होंने आंखों के माध्यम से हृदय में कृष्ण को लेकर के जो आलिंगन किया उसे उनका जितना शुभ था वो खत्म हो। तो अशुभ और शुभ क्या, साधकोचित यहां पर मत समझना, वहां पर बहुत ऊंचा भाव है। गोपियां का अशुभ क्या, जो कृष्ण से मिलन में जो बाधा हो रही है अशुभ, ये दूर हो गया, क्षीण हो गया उन गोपियों को, क्यों, पूर्व जन्म में उन्होंने साधन किया, भावावस्था तक प्राप्त किया, इस जन्म में अभी प्रेम नहीं मिला, अब वो परिपक्व प्रेम कैसे होगा भावावस्था से, इसलिए गोपी गृह में जो मैंने उनको जन्म दे दिया और जन्म देकर के नित्य सिद्धाओं से थोड़ा सा मिला दिया, कृष्ण की इन कथाओं को सुनने का सुयोग हुआ, गोपी तो हो गई, किंतु अभी पतियों के साथ में संबंध है, पति और घर के लोग बड़ा प्यार करते हैं, एक बेटा भी घर में हो गया, किंतु कृष्ण में पूरक राज होने से और सिद्धाओं के कुछ संग होने से कृष्ण के प्रति तो खूब तीव्र मिलन की आकांक्षा तो हो गई, पूर्व जन्म में जो सिद्ध नहीं था वो भी सिद्ध होने लग गया, किंतु थोड़ा सा बाकी रह गया था, वही बाकी था, सब लोगों का है उसके प्रति प्रेम, ये भी जल करके खाक हो गया, तीव्रताप धुता सुधा, ये मिलने में बाधा थी, जितने भी पतियों से जिनका संग है उनको कृष्ण लीला में नहीं जा सकती है, प्रवेश नहीं कर सकती राशि इत्यादि में, दूर से कुछ लक्ष्य कर सकती हैं, सुन सकती हैं, ये सब अशुभ है। यदि होगा तो रस रसाभास हो जाएगा, रस विरुद्ध व्यापार हो जाएगा, इसलिए जिनको नहीं हुआ था पतियों के साथ में संकित विवाह हो गया है, परोढ़ा है, गोपियों का नित्य सिद्धाओं का संग हो गया, या कृष्ण ने अर्थ के पा करके कहीं डगर में उनको इनसे भेंट हो गई, तो बस उस लीला में प्रवेश, उनको रास में कोई नहीं रोका, जैसे नित्य सिद्धाओं को किसी ने नहीं रोका, और जिनमें भी कुछ कमी है उनके लिए रोक लिया, जोग माया ने रोका, उनके पति लोग नहीं रोके, जोग माया ने पतियों के माध्यम से उनको रोक दिया, जो उनका कषाय था कुछ प्रेम में वो उस कषाय को दूर कर दिया, विरह तीव्रता। अब वो मरी नहीं, उनका ये सब दूर होने से जोग माया ने उनको क्या किया, पति के अलक्षित रूप में ही कपाट खुल गया, कपाट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जीवात्मा के लिए कई कपाट खोलने की जरूरत होती है, एकदम कांच में उसको यदि बंद कर दिया कहीं एक इतना भी छेद न रहे चारों तरफ कांच, तब तो ही उसमें से निकल जाएगी आत्मा, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है,
बालाग्रसत भागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च भागो जीवा सभी ये सचा अनंताय कल्पते। अनंत जीव है, एक नहीं है, स्वहम नहीं, अनंत जीव है। तो इनके लिए कपाट में तो कहीं ना कहीं छिद्र तो होता है, उनको छिद्र की भी जरूरत नहीं, बस वो रास में पहले पहुंच गई, पीछे से और गोपियां पहुंची। तो इसलिए कहती हैं ये गोपियां घर में बैठी हुई भावना से देख रही हैं और कह रही हैं, ओ मैं जन्म लेती तो इन्हीं के कुल में जन्म लेती देवी बन करके, और हमारे पति वहां पर पतियों से तो संबंध है, तभी ये पति हमको ले जाते और बिना किसी बाधा के, कोई भी बाधा नहीं, कृष्ण का रूप तो दर्शन कर लेती, कुछ पुष्प तो उनके ऊपर में चढ़ा देती। हाय हाय, हम लोगों को यह सौभाग्य नहीं है, धन्य है ये देवियां। कहते कहते देखती हैं कुछ गायें हैं और उनके बछड़े हैं। देवियों की तो बात छोड़ो, ये तो बहुत बुद्धिमान है और इनको यह संभव है, किंतु जो पशु हैं आज देखो तुम उनकी क्या दशा। गावश्च कृष्ण निरुक्त देन गीत पीयूष उद्भिद,
क्या वो कृष्ण निर्गत
निर्गत देन गीत पीयूष उद्भिद कर्ण पूत पिबंत शाबाश्रुत तन पाया कौलास्मत देन। तात्पर्य ये गायों को तो देखो, इन गायों का कितना सौभाग्य, उनके बछड़ों का कितना सौभाग्य है, मधुर मधुर कृष्ण की बंसी बज रही है, भाव नेत्र से देख रही। गायें जो जहां पर हैं, लाखों कोटि गायें, नंद महाराज की कितनी गाय, 9 लाख, श्रीदान की कितनी गैया हैं, 11 लाख, उपानंद के बेटे जो हैं सुभद्र, उनकी भी ऐसी गायें हैं, कोटी कोटी गायें, अनगिनत गायें जो जहां पर हैं, बस जहां कृष्ण के मुख से वेणु की ध्वनि निकली वहीं पर खड़ी हो गई, कान को जो ऐसे कर रही थी उसको उठा दिया, कान को ऐसे ऐसे कर रही हैं, जिधर से वेणु की ध्वनि आ रही है उधर ही एकदम लगा दिया और खड़ी हो गई, आंख बंद कर दिया, एकदम स्तब्ध हो गई। उसके मुख में घासे जो चल रही थी जो ऊपर उठाया, अब उसको होश नहीं, ये गाय जब भीतर ले जाऊं या बाहर ला, बस जहां का तहां, बस एकदम पत्थर जैसी स्तब्ध हो गई। यही कृष्ण ने लिया के विचित्रता है, ऐसा सुंदर रूप है उनका, उनको देख करके चर स्थिर बन जाते हैं, जड़ जंगम बन जाते हैं और जंगम जड़ बन जाते हैं। आगे राजपंचाध्याय में यह सब आएगा, ये किस प्रकार से का स्त्री अंग कल बताए तो बेनुगी तो सम्मोहितार चैता न चले त्रैलोकम, इसमें सब आएगा। जड़ भी चेतन, चेतन जड़ हो जाता है, पर्वत गलने लगता है और नदियां जो चलने वाली है उसका पानी कैसा हो जाता है, पर्व जैसा गल जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। इस तरह से कह रहे हैं, अरे गायों को तो देखो ये कितना इनका सौभाग्य है कृष्ण की इस वेणु गीत को देख करके, और एक जहां है वहीं से कृष्ण का रूप देख रहे हैं, जो गाय पीछे है वो क्या कर रही, यही तो कृष्ण की अद्भुत लीला, जो माया ने कर दिया, जो गाय पीछे है, जो बाहर इधर में है उधर में है, जहां है आमने है सामने है बहुत दूर है, वो समझिए कृष्ण के निकट में, कृष्ण के मुखारविंद की तरफ में देख करते और ऐसे करते, एकदम मुग्ध हो गई, जड़वत हो गई। अरे जरा उनके बच्चों को तो देखो, छोटा सा भी बच्चा बछड़ा या बछड़ी, और कृष्ण के इस वेणु गीत को और उनके सुंदर रूप को देखा, देखा के मुक्त हो गया। बछड़ा क्या कर रहा था, मैया का दूध पी रहा था, मैया का दूध पीते पीते ही जब सुना, उसने भी कान खड़ा करके उधर से दोना बनाया, ऐसे बना देते हैं, और ऐसे एकदम लगाया और आंख बंद कर दी, अपने आप समाधिग्रस्त हो गया, और दूध जो लिया था वो गले में ही अटक गया, न भीतर जा सका न बाहर, उसको फुर्सत नहीं है, उसको होश नहीं है, वहीं पर रह गया। कौलास प्रतस्थु, बस कवल जो था वही पर आ गया। गायों का कवल घास का और इनका कवल किस चीज का, तृण का, दोनों का वहीं पर आ गया। च्युत बुद्ध नहीं गई, ये कृष्ण की का सुंदर रूप और उनकी वेणु की ध्वनि गोपियों ने देखा जहा है। देखो तो कितना सौभाग्य इनका बछड़े का, छोटा सा बछड़ा और कृष्ण के प्रति इतना अनुराग, कृष्ण के निकट होकर के सुन रहा है, कृष्ण के रूप को देख रहा है। गैया का देखो, और कहा हम दुर्भागी, हमारे पति, हमारे सास ससुर, हमारे जेठ के बड़े बेटे या ननद, सभी हमारा घोटी और मान लगाते हैं। जब देखा जब बैठे तो अनुमान लगाकर कहीं आज कहां से आ रही है, कहां गई थी, ताना मारेंगे। और देखा जो कहीं श्रृंगार कर रही है, कुछ कहां जा रही है, मिलने के लिए जा रही, ताना मारेंगे। अनुमान लगा करके विरोध करती हैं, कोई कारण नहीं है, तभी कारण का सृजन कर देती हैं मिलने में बाधा के लिए, झूठ मूठ को इस प्रकार से कारण। यदि श्रृंगार कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे गड़बड़ हो गया, इस तरह से उनको बाधा देते हैं। इसलिए यदि हम लोग मर करके यदि गैया या बछड़ा बछड़ी हो जाते तो हमारा जीवन सौभाग्यमय होता। ये सब भी बहुत ऊपर के जो मादन मोदन जैसे हैं, ये सब उसमें है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने सप्तम श्लोक में बतलाया। चैतन्य क्या है, जुगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायिम जगत सर्वम गोविंद विरहे नवे। अब बतलाओ कि जैसे ये महाप्रभु जी करे और गोपियों का विरह देखो तो कैसा स्वाभाविक रूप। हम लोग को कभी भजन करते करते ऐसा भाव आता है कि हमारा जीवन वृथा गया, हम वृंदावन में किमत गुलम लताओषधी नाम हो जाते, कोई एक तीन गुलम लता हो जाते, एक वृक्ष भी हो जाते, वहां का एक पशु पक्षी भी हो जाते। क्यों, जत्किंचित तृण गुलम की कटमुखम गोष्ठे समस्तं हित सर्वानंद मुकुंद दैतं लीलानुकूलं परम शास्त्र मुहुर् मुहुर् निष्ठंकितं जांचया ब्रह्मा देवपि सस्पिहं ततो सर्वं मयाइदं वन्दते। वृंदावन का ऐसा कोई भी नहीं है जो कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता, और सभी लोग कैसे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और कृष्ण के लीला के अनुकूल हैं, सहायक हैं। एक उदाहरण देता हूं, राधा जी ने मान किया कृष्ण से गोवर्धन में बैठ रही थी, तमक करके वहां से उठी और चलने लगी। कृष्ण बहुत मना रहे हैं, ललिता जी सभी लोग मना रहे हैं, आज वैसे तमकी जो कृष्ण की तरफ में वो फिर कभी नहीं देख रहे, चली जा रही। बहुत कृष्ण ने चेष्टा किया, जब नहीं मानी तो कृष्ण उदास होकर के बैठ गए। इतने में आगे जब बढ़ी, एक कुंज से एक बड़ा विषधर काला सर्प निकला और राधा जी को उधर से आ रहे हैं और फौस ऐसे जो किया, बस संग प्राण लगा और गौरी पीछे की तरफ में लपक करके कृष्ण की गोदी में गिर गई। लीला का अनुकूल हुआ ना, मिलान करा दिया, जो ललिता नहीं कर सकी, बंसी नहीं, थक गई हार गई, जो नहीं करा सकी, कृष्ण हार गए, सुबल सिद्धाम हार गए, और वो काम किसने किया, ये देखो। इसलिए मैं कभी भी सर्व भी हो, कीकट बिच्छू इत्यादि कुछ भी हो तो ब्रज में जन्म लो हम, जब भी पहाड़ के रूप में मिल गए तो हो तो गोवर्धन में, पानी हो तो जमुना के में पानी हो करके रहे, कोई जीव जंतु हो, जलचर हो तो जमुना में, स्थलचर हो तो इस तरह से गोवर्धन के गिरिराजी का पाहन बनूं, पाहन माने पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं, इस तरह से वो करता है। ऐसे ही गोपियां कह रही हैं, यदि प्रेम हो तो इन गायों के समान और बछड़ों के समान, कहते ये ऐसा भी हमारी योग्यता नहीं ऐसा कर, अरे इनसे जो कम है, ये सुख पक्षी कोयल मैना तोता और सूक और साजी पपी है इत्यादि, ये भी इनकी तो बात छोड़ो, ये तो बहुत चतुर है। गायें तो मनुष्य के समान के भावों को बुझने वाली होती हैं, मनुष्यों के निकट होती हैं। अरे दूर जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं,
इनका कैसा सौभाग्य है? कहते अहो बतांग बिहगा, अपने सखी को कह रही है क्या
अम्बो
अम्बो, ये किस लिए कह रही है? तो ये यशोदा मैया से शायद बातचीत कर रही है, इसलिए यशोदा मैया को ये बतला रही है जो देखो ये सब बेणू गीत है जो अपनी मैया को सुना रहे हैं, या वैसे ही मैया अपनी अपनी मैया को सुना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये किस लिए कर रही है? कभी बात है ना अपने बेटे, अरे भाई देखो ना यहां जा रहा था ऐसा, अरे भाई क्यों कह दिया, अरे बहनों, किसको भी वहां पर संबोधन वहां पर है, ऐसे एकदम भाव में विभोर हो गई अपने सखी को अहो बताऊंग, अरे मैयारी, मैयारी कहते हैं ना किसी को, कोई कोई ऐसी कोई बात हो गई, अरे मैयारी मैं क्या कहूं, तो ऐसे ही मैयारी कह रही हूं जसोदा मैया को, नहीं तो ये रसाभास हो जाएगा, उलट जाएगा मामला। अहो बताऊंग बिहगा मुनयो वनस्मि, और इस वृंदावन में जो बिहग है पशु पक्षी है ये साधारण नहीं है, मुनयो मुनि लोग है, ये मुनि लोग हैं, साधारण नहीं है इस वृंदावन में, और जगह में चिड़िया है कैसे समझेगी वो, कहे सखी कैसे समझी, अरे इतना नहीं समझ सकती, अरे देखते नहीं हो ये कैसे ये है, अहो बताम्ब बिहगा मुनयो वनस्मि, कृष्ण चितम क्या है, क्या है उसको कल्बेन वेतम आरुष्य दुर्मभुजान, आरुष्य दुर्मभुजान, देखो देखो तो वो श्लोक दुर्मभुजान रोज याद रुचिर प्रबाणन श्रीमंत मिलित देशो विगतान्यवाच, विगतान्यवाच करें क्या, ओहो बताऊंग बिहगा मुने वो बनस्मिन कृष्णेक्षितम तदुदितम कलो बेन गीतम आरुज तुम भुजान ऋषिर प्रमाणन सुनवंत मिले तद ऋषो विगतान्यवाच, अरे मैयारी देखो ना इस बिहग के वृंदावन के जितने पशु पक्षी पक्षी इत्यादि हैं ये मुनि लोग हैं जो कि वेद की शाखाओं का आलंबन करके बैठे हुए हैं। मुनि लोग क्या करते हैं, वेद की एक एक शाखाएं होती हैं, 1180 ना कितनी शाखाएं हैं, उसमें गोपाल तापनी इत्यादि एक तरह की शाखा है, छंदोग्य इत्यादि एक शाखा है, उसमें कौन वेद उपनिषदों में
गोपाल तापनी
है ये साधारण,
मंडुक
मंडुक इत्यादि जो है एक तरह की है, ईश केन कथ इत्यादि गोपाल तापनी इत्यादि है, ये सब ये तापनिया भी है, इसमें से ये मुनि लोग जो वृंदावन वाले हैं ये कैसे हैं, मुनि एक होते हैं ध्यानस्थ समाधिग्रस्त, समाधि में हो जाते कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते हुए, वाणी रहते हुए वाणी का प्रयोग नहीं होता है, आंख रहते भी आंख का प्रयोग नहीं, तो ये लोग धन्य हैं कि कैसे हैं, हम लोग ऐसा मुनि होना नहीं चाहेंगे, ऐसे मुनि में हमारी प्रति नहीं है जो समाधिग्रस्त होकर के आंखों को भी बंद किए हुए कोई भी स्पंदन नहीं है अंगों में कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहे, ये कैसे है, क्वैल कुहकती है ये इस वेद की शाखा में है, ये कौन सी शाखा है, भागवत की शाखा, वो लोग तो उपनिषदवादी शाखा पर बैठे हैं, कोई कर्म की शाखा पर, कोई कुछ तरह तरह की शाखाओं पर बैठे हैं, किंतु वृंदावन वाले जो ये पशु हैं सूक और सारी दोनों में दंड लग जाता है, सुख कहता है ये हमारे कृष्ण बड़े सुंदर हैं, तो सारी कहती है जब तक कृष्ण के बाएं तरफ में राधा नहीं हो तब तक वो सुंदर नहीं है, जब वो बाएं तरफ में है तभी सुंदर है, कहते कृष्ण मदन मोहन है, अरे मदन बात मोहन की बात रखो, राधा जी क्या है, मदन मोहन मोहिनी है,
और नहीं तो केवल राधा के भीन केवल मदन मोहित है। कौन सा मदन में मोहित है? गोपियों के प्रति जो मदन का भाव उसके द्वारा ये मोहित है। इस तरह से दोनों में सुख और सारी में द्वंद चला वृंदावन के, तो ये देख रही है क्या, ये जो है अवतानी समस्त सब ये समस्त विषयों से विरक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं? वाणी से श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया, ये मौन नहीं रहेंगे, ये भागवत की शाखा पर बैठे हैं। व्यास जी जो हैं, ये नारद जी हैं, ये कौन सी शाखा पर? भागवत की शाखा पर बैठे हैं। ये लोग ऐसे हैं, कोयल है, तोता है, मैना है, सुखसारी ये पपीहे हैं, मधुर सबसे कृष्ण का को बुझाते हैं, इसलिए ये लोग कीर्तन प्रधान हैं, अपनी वाणी को भी इसमें लगाए हैं, अपने अंगों से सेवा करते हैं, आंखों से कृष्ण का रूप देखते हैं। आज कृष्ण की यह पल ध्वनि को सुन करके अहो वतांग विहगा मुनयो वनस्मिन, ये क्या कर रहे हैं? विगतान्न वाच, और कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस कृष्ण कृष्ण राधे राधे कर रहे हैं और उनके लीलाओं का गायन करते हैं। सुख कहता है अरे रसिक शिरोमणि, अब आपको सोना उचित नहीं, आप तो स्वयं चतुर हैं, अब तो सूर्योदय होना जा रहा है, अब तो जरा उठिए, प्रबोध देता है। विचक्षण और कुछ कहता है, साड़ियों में तीक्ष्ण दी हैं, शुभा दी हैं, और एक और तो ये सब राधा जी को प्रबोधन कर रही हैं। तो बतलाओ तो ये साधारण नहीं है, इसलिए आप कर रहे हैं सब बातों को छोड़ करके कृष्ण का रूप दर्शन कर रहे हैं ये, और उनकी मोहिनी देव गीत का ये सुन रहे हैं। ये वेद की ये परिपक्व जो ये निगम कल्पत रूप का ये जो फल है, इसके शाखा पर बैठे हुए ये लोग देख रहे हैं। यदि हमारा जन्म हो अगले में तो हम लोग ऐसे ही होकर के आए, मयूर नृत्य कर रहे हैं ना, और ये सब देख रहे हैं। बीच बीच में ये लोग भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का रूप देकर के इनका जीवन सार्थक हो जाता है, ऐसे हम लोगों का भी जीवन सार्थक। अरे इन ये तो चलने वाले प्राणी हैं, हम तो देख रहे हैं, ये बातचीत भी करते हैं, बोलते हैं। अरे ये नदी को तो देखो, यमुना को, पावन सरोवर को तो देखो, और मानसी गंगा को तो देखो, ये कैसी करती है, इनकी धारा उलट जाती है। नद्यास तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थलित उर्व भुजई मुरारी गृहं पिता विजगलम कमोलोभा। अरे इस नदी को तो देखो, ये कृष्ण की कामिनी है, नदी नहीं है ये, मानसी गंगा क्या, कृष्ण की प्यारी कोई है ये। उसी तरह से जितने वृंदावन के ये सब हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, ये सब कृष्ण की बड़ी प्यारी है, इसलिए नदस्तत उपधार्य मुकुंद गीत उपधार्य, विशेष रूप से निकट से ये नदी जमुना के किनारे खड़े होकर के उपवन में कदम्ब वृक्ष के नीचे कदम्ब पर सहारा लिए हुए त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए अदरपन मुरली बेणु को रख करके बजा रहे हैं। जिस समय उन्होंने बेणु से गान किया, जमुना जी जा रही थी, रुक गई धारा, लौटने लगी नीचे से, जो कि धारा उनका प्रयाग की तरफ में जा रहा था, वृंदावन से निकल करके इधर वो बजाया उन्होंने यहां पर बंसी बट पर, जो मथुरा की तरफ आ रहा था वो मथुरा से लौट गया वो धारा प्रवाह, और चला किधर में, वृंदावन के, तो यहां पर कृष्ण निकट में पहुंचे और अपने कानों में उसने सुना और सामने कृष्ण को देखा, देखकर के एकदम मुग्ध हो गई जमुना जी, हृदय के आवेग को रोक नहीं सकी, उनका जो उनकी जो धारा उनका जो धारा प्रवाह था वो रुक गया बीच में। कैसे रुक गया? ऊपर से तो आ रहा था धारा, आ रही थी, और नीचे वाले इधर गई, दोनों में रुक गई। जब इधर से सामने से भी मथुरा में जब सीढ़ी से उतरते हैं हजारों आदमी और नीचे से जब चढ़ते हैं, बस रास्ता नहीं मिलता, बस सब लोग रुक जाते हैं। ऐसे यमुना की धारा नीचे वाली लौट आई और ऊपर वाली आने लगी, दोनों मिलकर के रास्ता नहीं है जो इधर उधर जाए, दोनों रुक गई। तब उन्होंने क्या किया? धारा प्रवाह रुक जाने से क्या हुआ? इतनी जोर से ऊपर से धारा आ रही है, उधर से आ रही, बस घूमने लग गई, उधर का ऐसे ऐसे पानी प्रवाह। अरे ये नहीं, काम से उनका प्रवाह ऐसे हो गया, हृदय एकदम नाच उठा आवेग से। ऐसा होने पर उन्होंने क्या किया? अपने आवेग को कमल लिया, कमल हाथों में ले लिया और कृष्ण के चरणों से चढ़ते हुए वो कहां तक पहुंची? एकदम बस्तक स्थल तक पहुंचे। किस लिए? आलिंगन करने के लिए कृष्ण को, अपने प्रियतम को। ये नदी नहीं है, उनकी प्रियतमा है, इसलिए यमुना जी को पटरानी भी कहते हैं। पटरानी कहने से उनको कुछ कम कर देना, प्रियची कहना ही ठीक है। वो पटरानी होंगी कालिंदी द्वारका में, यहां पर पटरानी कहना कोई भी सखी नहीं चाहती, हम पटरानी है। इसलिए वो ऊपर उठी, आलिंगन किया, किंतु कृष्ण बजाने में वेणु गीत में इतने तन्मय थे जो उनको ध्यान ही रहा कि कौन आलिंगन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बड़ी लज्जित हुई, ये कृष्ण की उपेक्षा कुछ नहीं, कुछ वो उनका जो काम भाव था शांत हो गया और धीरे धीरे नीचे उतर आई। उतर करके क्या किया? अपने प्रवाह रूपी, अपनी तरंगों रूपी हाथों में, कर कमलों में वो कमल को उठाया और उठा करके कृष्ण के चरणों में उपहार देकर के कहा, यही हमारे लिए बहुत है, वो मेरे लिए संभव नहीं आलिंगन करना। और देखो तो नदियों का क्या स्वभाव, आगे यदि मरी हम तम प्रार्थना करते हैं इस यमुना से ही कि हम उसका पानी बन करके आए, उसकी धारा प्रवाह बन करके हम भी नदी हो, मानसी गंगा हो। अभी आप लोग जानते होंगे उस पार में मथुरा के लौहबन, वहां पर एक सरोवर है लौहबन में, वो भी उनके लीला का स्थल है। कृष्ण का वहां पर नौका विहार इत्यादि लीलाएं होती हैं। इसी सब को ध्यान में रखते हुए गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, यदि हम मरे तो इस जन्म में तो सौभाग्य नहीं है, जो कमल का उपहार लेकर उनके चरणों में दे और उनको आलिंगन कर ले। हमारी नंदे और सांसे हमारे पति इसको सुन करके ही दूर से घर से बाहर कर देंगे, जाने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग ऐसा चाहते। इतने में उन्होंने देखा क्या, अरे आकाश में मेघ घूम रहे हैं, कहा जो यदि हो तो मैं मेघ हूं। अरे यमुना में तो प्रवाह है, यमुना में भी अधिष्ठात्री देवता हैं, इन मेघों में क्या देखो तो इन मेघों को ये क्या करे, दृष्ट आपते ब्रज पशु राम गोपाई, फिर राम गोपाई क्या श्लोक, संचार्यांतम अनुदेव उदीरयंतम प्रेम प्रेम प्रबुद्ध उदिता कुसुमावली भी सखु बधात बपुषारुद आपत्तम। देखो तो कृष्ण से इनकी कितनी मित्रता है, कृष्ण के लिए कितना प्राणोत्सर्ग है इनका। सखी मैं यदि हूं तो ये मेघ ही बनू। देखो ना कृष्ण का इनका रूप मिलता है ना, सखा है ना, ये कृष्ण के लिए अपने तन धन मन वचन सबको उन्होंने अर्पित कर रखा है। आज ये आकाश मार्ग में जाकर गर्मी का दिन और ये ऊपर से मेघ छत्ता बन करके ऊपर से कुसुमावली का दर्शन कर रहे हैं, पाव धीरे धीरे गर्जन कर रहा, आनंद के मारे गर्जन कर रहा है। ये गर्जन नहीं बल्कि ये स्फुट ध्वनि है, कलप ध्वनि उनकी, वे गर्जन कर रहा है। कृष्ण जैसा, कृष्ण की चिंता करते 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 ये भी श्याम बन गया है और ऊपर से पुष्प की वृष्टि कर रहा है। जिधर कृष्ण जाते हैं गोचारण करने के लिए, बस वो ये सरकता हुआ उधर ही जाता है ऊपर से छाता बन करके, उनको कभी धूप लगनी नहीं जाता। देखो तो मित्र ऐसा, और हम लोग भी कभी मेघ हो सकती हैं। गाय तो कुछ सजीव है, उसे ये पशु पक्षी भी में कुछ है, नदी में भी कुछ सजीवता है, किंतु देखो तो मेघ, इसे यदि हम लोग मेघ कभी हो सके और कृष्ण की सेवा यदि मेघ जैसा भी, हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। देखते देखते ही उन्होंने देखा भाव नेत्र से ये गोवर्धन में ये कृष्ण पहुंच गए और देख करके क्या कहा, क्या दो घंटा हो गया, अब यही श्लोक करके खत्म कर देख करके। अरे देखो तो ये भील कन्याएं जो हैं, पुलिंदियां हैं, पहाड़ी जंगली औरतें हैं जो कपड़ा पहनना भी नहीं जानती, और लकड़ी बिनने के लिए या सूखे कंडे को बिनने के लिए ये जंगल में आई हैं। देखो तो कृष्ण के प्रति इनका कितना सुंदर भाव। अब इस बात पुलिंद ही आना चाहिए, इसे कहते पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ चढ़ा गए, पुलिंदियों का जन्म लेना ही पूर्ण रूप से सार्थक है। जितना अभी तक बतलाया अपने भावों को छिपा रही थी, किंतु अब छिपा नहीं सकी उनका भाव, अभी तक अहिथा भाव से प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को छिपा रही हूं, किंतु यहां पर अपने आप व्यक्त अब रह नहीं सकी। कुछ समझ जाती है था उसमें आई भील कन्याओं को देख करके, कृष्ण से संबंध नहीं, कृष्ण की किसी वस्तु से भी संबंध नहीं, और कैसे इनको प्रेम हो रहा है। उन्होंने देखा जी इस जंगल में गिरिराज की तराई में शानु प्रदेश में घासें हैं सवेरे का समय, और उन घासों पर ओस बंदू उसमें लगे हुए हैं मोती जैसे झलक रहे हैं, और उन वो मोती कैसे है रंगीन लाल लाल है, ये लाल लाल कैसे हो गए, कृष्ण के वो कुमकुम लगा पाते, अरे ये तो कुमकुम, ये कुमकुम कहां से आया, गोपियां देख रही है वो पुलिंदी नहीं जानती, किंतु ये भाव नेत्र से देख रही वो कुमकुम जो है लाल लाल मोती बेशकीमती मोतिया है, उसको देखा, देख करके एकदम मुग्ध हो गई, हृदय में ताप हुआ, बस उनको बटोरने लगी हाथों से, और हाथ में जो लालाई आई कुमकुम की अपने मुखारविंद में अपने सारे अंगों में उसे लपेट लिया, एकदम तन्मय हो गई कृष्ण के प्रेम में, सुख दुख हो गई और एकदम मोहित मुग्ध हो गई। ये कहां का कैसे ये कहां से आया कुमकुम, तो उसी के लिए बतला रहे हैं कौन, गोपियां बतला रही हैं भाव नेत्र से, पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदार्थ जराग, उरुगाय, उरुगाय माने क्या, उरु जो गान करते हैं तौत मीठे सर से, ये जो कृष्ण है उरुगाय पदार्थ जराग, जिनको उन उत्तम श्लोकों में गाया जाता है, किंतु ये उतना ठीक नहीं, गोपियां उन गायती कृष्ण के संबंध में जो गान करती है, बंदे नंद ब्रजेष्ठ नाम पाद रेणु अभिक्षुणा जासन हरि कथोद गीत पुनात भुवनत्र, तो इसलिए उन गाय कृष्ण के लिए कह रही हूं पादाब्ज राग, उनके चरण कमलों में जो ये राग है पादाब्ज, ये कौन कुमकुम है, तो कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाता है कोई, तो ये कहां से लग गया, ये कहां से लग गया, कहते हैं कि ये लग गया, कैसे लग गया ढेर व्यक्ति इसको समझ सकते, ये लग गया गोपिया अपने अंगों में कुमकुम लगाती हैं, अब ये कृष्ण से जब मिलती हैं तत्ते सुजात चरणम बरू हम स्तनेशु भीता सुनई यदि यदि मई कर, उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को धारण किया और वो कुमकुम उसमें लगा, वह कुमकुम लगा घास में और घास से वो कुमकुम को अपने हाथों में स्पर्श करके लगा रही, इतना प्रेम, कृष्ण से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं, और ये जो कह रही है उसी का कुमकुम वो लगा कृष्ण के चरणों में, और कृष्ण के चरणों से लगा घास में, और घास से पानी मिश्रित होकर के उसने उठाया लगाया, इतना दूर का संबंध गोपी आकर किया जन्म हमारा हो तो ये पुलिंदी करने के रूप में, ऐसा सौभाग्य। किंतु वो नहीं जानते ये हमारे ही अंगराज है। ये कृष्ण बड़ी सावधानी से उसको रखते हैं, यहां तक कि पीताम्बर से पूछ करके उस कुमकुम को अपने पीताम्बर में रखते हैं ऐसे चीज को। तो ये धन्य है पुलिंद कन्या, इन्हीं का जीवन पूर्ण है, कृतार्थ पूर्ण बने यहां पर कृतार्थ, कृतार्थ है इनका जीवन। देखते देखते ही गोवर्धन प्रेम की नजर आई, अरे देखो तो गोवर्धन गिरिराज को, मने इनसे भी ये गिरिराज गोवर्धन को देखता है कि ये इसके लिए संभव है, किंतु पत्थर को कहां से संभव है। गिरिराज को देखो हरिदास बरज, क्या है वो हंताय मद्रगला हरिदास बरज, जब राम कृष्ण चरण स्पर्श हो प्रमोद मानम तनोच सा गोवर्धन गिराजी का स्वभाव देखो। ये हरिदास वर्ज, एक हरिदास है युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हरिदास हैं उद्धव जी, वह हरिदास वर है, वह हरिदास, ये हरिदास वर कौन उद्धव, और ये गिराजी क्या है हरिदास वर्ज। इनका जैसा किसी का सौभाग्य नहीं है, जो कि कृष्ण आते ही उनको पानी देते हैं आचमन करने के लिए, पानी पैरों को धुलाने के लिए पानी देते हैं, मानसी गंगा, मानसी गंगा है कुसुम सुर, गोविंद कुंड, ये नवल कुंड, अस्परा कुंड, उद्धव कुंड, सुरभि कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड। देखो तो ये गिरिराज की देन है, यही नहीं अपने पानी से सुशीतल उस भूमि को करते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर हरी हरी घासें आती हैं, जिसमें गाय और बछड़े खाते, कृष्ण के सखा है ना, कृष्ण ऐसे प्रसन्न नहीं है, पहले उनको परिकरों को प्रसन्न करो, गिरिराज यही करते, बड़े बुद्धिमान है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये सब, कृष्ण के सखाओं को खाने के लिए क्या करते हैं, सुंदर सुंदर केले, अमरूद, आम, अंगूर, नाशपाती, यहां तक कि मधु इत्यादि जो छत्र में हो हुआ करते हैं। इस तरह से पानी असु यव सकंदर कंद मूलई, इन सबको कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं। लीला कंदरे कंदरे ते रसिजत नवजूनो दंदमस्मिन् नमन्दम इति कृत कल्वांत लग्न कस्तद्दयर मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनम मे। गिरिराज गोवर्धन जी राधा कृष्ण के विहार के लिए, सखाओं के विहार के लिए वर्षा ऋतु में झिम रिम झिम वर्षा हो रही, और उस समय कृष्ण कहां रहते हैं, उन कंदराओं में, कभी सखाओं के साथ में खेल रहे हैं क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी गोपियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। कदम्ब खंडी है कहां पर, अप्सरा कुंड के पास, बड़ी सुंदर वो कृष्ण की लीला विहार भूमि है, वहां पर एक कमाल एक कदम हमने देखा था आज से 40-50 वर्ष पहले, अभी भी कुछ दिन था, अब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं यह नया वहां पर लगाए, किसी भक्त को ऐसा करेंगे प्रेरणा देकर के तो फिर हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुहावना दृश्य था, जोड़े के जोड़े सभी विराट कदम खंडी, उसके पास में एक और कदम खंडी है, बहुत सुंदर सरोवर है, थोड़ा सा आगे पिछड़ी से जाने पर मिलता है, ये सब दिव्य ये सब स्थान है। वो कदम के दोने लगते हैं जिसमें कि रघुनाथ दास गोस्वामी मत्था पीते थे, एक दिन भूल से दूसरी जगह से लाया तो उसको बिगड़ गए, ये सब स्थान है। रास लीलाएं जहां पर हुई, कंदराएं ऐसी हैं जहां पर की गोपियों के साथ तो उनका विहार होता है, गौरव कुंड पास ही है, राधा कुंड पास है, सूर्य कुंड भी पास ही है, ये सब लीलाओं के स्थल है, यहां पर ये कंदराएं देते हैं। अब गोवर्धन गिरिराज बहुत नीचे चले, कंदराएं भी दब गई, उसके अधिकारी भी नहीं रहे देखने के, महाप्रभु जब तक आए थे रूप सनातन थे, उन्होंने उन कंदराओं का वर्णन किया है, राघव पंडित जी जब ले करके जा रहे हैं नरोत्तम जी गोस्वामी को लेकर के, नहीं श्यामानंद प्रभु नरोत्तम और श्रीनिवास को लेकर के जा रहे हैं, तब वो दिखला रहे हैं, ये सब हम लोगों का सौभाग्य, ये सब अभी भी खोजने पर ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो ये कंदराओं को कुंजों को, कितने सुंदर सुंदर कुंज गोवर्धन में बने हुए हैं। एक दिन तो कृष्ण गोचारण करते हुए नीचे थे, ऊपर में श्रीमती राधिका जी अत्यंत कटीला कोई नुकीला पहाड़ का कोई अंश टुकड़ा उस पर खड़ी है, दो पहाड़ के सामने एकदम सूरज जल रहे, तप रहे हैं और उस नुकीले पत्थर पर गर्म एकदम तवे के समान और सब बड़े प्रेम के साथ में देख रहे हैं वहां से। उनको लगता ही नहीं है ये प्रेम का मार्ग। तो करिए हो हरिदास वर्ज जद राम कृष्ण चले स्पर्श प्रमोद मानन कनोति सह गोवर्धन। इस गिरिराज गोवर्धन हमारे ऊपर में कृपा करें, कोई अपना पाहन भी तो बना लें जो कृष्ण आएंगे तो उनका स्पर्श हो जाएगा। देखते देखते उन्होंने देखा अब अंत में कृष्ण को और बलदेव को सिर पर गयों को नोयन करने वाली बांधने वाली पैरों को उन्होंने सिर पर रखा है। पगड़ी बड़ी सुंदर पगड़ी बन गई और उनको बांधने के लिए जो रस्सी होती है पास, वो पास क्या निर्जोग पास लक्षण यो विचित्रम एकदम गोप सखा का भाव बनाया और यहां पर बांधा और हर जैसे हो करके और जो बांधने वाली रस्सी है उसको क्या किया ऐसे गले में लटका दिया। वनमाला से भी अत्यंत सुंदर रही अद्भुत और मोर मुकुट से भी अत्यंत सुंदर हो, उसके ऊपर में मोर मुकुट होगा इसके ऊपर में अद्भुत सुंदर। एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं वे जो क्या है वो श्लोक क्या है पहले प्रारंभ प्रारंभ में वही उसी श्लोक वो गोप कई अनुबनो नए तो उदार देनिष्ठनई कल्पतई तनुभित कल्पत बने क्या क्या कर रहे हैं वो कई गलियों को बुला रहे हैं श्यामली धौली सभी गाय अपना अपना नाम सुनकर के दौड़ जाते और जब गोपियों के लिए होता है तो राधे ललिते विशाखे चित्रे चंपकलते कहते हैं अस्फुट रूप में वही समझेगा जिसका वो नाम ले रहे हैं उसमें सभी का नाम है जो जैसा है वैसा है उसको। एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं सभी को आकर्षित करते हैं वृंदावन की भूमि जगत में सबसे पवित्र है। मैं तो उदार ऐसे जो कृष्ण हैं और बलदेव जी हैं जा रहे हैं कहने का तात्पर्य है कृष्ण के लिए बलदेव जी को औदिकता से उनका नाम ले रही है दोनों भाइयों को लोग समझ न जाए। उस गोपियों को पुनः पुनः प्रणाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का। जब तक वो हृदय में प्रेरणा नहीं देंगे एक तो उसका अर्थ ही सब नहीं आएगा आज यदि आएगा भाई तो भाव नहीं होगा भाव ही किसी प्रकार से होता है ये उपलब्धि नहीं होगी उसके प्रति लोभ नहीं होगा। भगवान करें ये गोपियां ही कृपा करें उनकी जो हलादनी शक्ति है और उनके प्रकाश काय गुण हमारे ऊपर में कृपा करें जिन चीजों को हम लोग समझ सके। कृष्ण जब थोड़े से और बड़े हो गए गिरिराज की पूजा का जैसा हुआ चले गए हैं वो आया था चले गए ठीक तो बहुत देर हो गया 7 बज गया है ना कि कितना तो आज यहीं पर कथा का विराम हो और कल सवेरे गिरिराज जी का उपाख्यान ये सब कर करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक रहे वंचा कल्प करु भस्य कृपा समृद्धे च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
कभी कभी गया तो बाद में कभी काम होती आते हैं वो भी कुछ छापी बात और
नहीं हम तकिया भी मंगा रहे हैं कुछ ऑर्डर दिया है 15-20 तकिया जो कि आराम के साथ में भागवत सुनते हुए सो गए। इतना बड़ा सुंदर सोने का मौका कहां मिलेगा। एक राजा थे, उनको नींद नहीं आती। उन्होंने ऐलान कर दिया जो राज्य में हमको जो डॉक्टर वैद्य होम्योपैथी वो एक क्या होता है आकुपंक्चर और जितने प्रकार के भी मुसलमानों का क्या हकीम, ऐलान कर दिया कि जो आकर के हमको सुला देगा थोड़ा भी उसको आधा राज्य हम दे देंगे। बड़े बड़े काबिल काबिल एक्सपर्ट डॉक्टर वैद्य सब भी आए, कोई नहीं सुना। एक कथावाचक भागवत के वो पर पहुंचे, मैं ऐसी दवा दूंगा जिसे आप सो जा सकते हैं। तो ठीक है, हमारा धारा जो तुम्हारे लिए है, तो एक बात आपको करना पड़ा है, ये भागवत हमारा सुनना पड़ेगा। मैं भागवत पाठ करूंगा, आप सुनेंगे, आप वहां पर आकर के बैठना पड़ेगा। उन्होंने अच्छी बात है, उन्होंने वंदना आरंभ की, भागवत खोल दिया और वंदना आरंभ किया और उसके बाद में कथा बांचनी आरंभ की और उनकी आंखों में नशा आने लग गया। कभी दवा तो बड़ी फर्स्ट क्लास रही है, थोड़ी देर में उनको होश नहीं रहा कि मैं कहां हूं कहां क्या हूं। बड़े आराम से सो गए। सोने के बाद में जब भागवत समाप्त हो गया, घड़ियाल और घंटे जोर से जब बजे, बड़ी मुश्किल से उनका मुंह खुला। अरे ये पक्की दवा है ये भागवत, अरे जिसे मुक्ति मोक्ष भोग सभी कुछ मिल जाता है तो क्यों नहीं मिल, क्यों नहीं जा सकती, जरूर मिल जा सकती। किंतु ये नींद नहीं है, ये क्या है, अपराध। अपराध अपराध मैंने क्या अपराध अपराध है राध है अपो अपगत हो गया है, राध प्रेम भक्ति ये अप माने अपगत माने दूर हो जाना। जिसका राग दूर हो गया है, हरि कथा से रुचि दूर हो गई है, उसको कहते हैं अपराध। सुनने की इच्छा नहीं कर, थोड़ी सी भी रुचि होती तो भागवत की कथा सुनते, तो रुचि नहीं है, अरोध हो गया है, दूर हो गया है। भागवत की कथा सुनने में यही सबसे बड़ा भारी अंतर। और एक है कि सुनकर भी क्या होगा, बहुत बात को सुनना ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब रुचि के अनुसार में, श्रद्धा के अनुसार में, भक्ति के अनुसार में भागवत का श्रवण करना चाहिए। अभी हम लोगों का राजपंच अध्याय का प्रथम अध्याय चल रहा था, अब तो सवा दस भी बज चुके हैं,
दस पांच
समय भी हो गया है, अब तो यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। लोग सो भी रहे, इनको हमारा दोष न बन जाए, कुछ जो इनको हमने जगा दिया हमारा फिर दोष एक आ जाएगा, जो भागवत सुनने वाले को मैंने जगा डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा अभी मैं दो एक बातें बस अभी सुनूँ, जो कृष्ण ने बंसी वादन की याद को बतलाया और कृष्ण ने गोपियों को लौट जाने के लिए कहा, दिव्य पत्नियों को भी लौट जाने के लिए कहा, ये आप लोग चले जाए। वो लोग लौट करके चली गई, इच्छा नहीं रहने पर भी उनको जाना पड़ा। बहुत गंभीर रूप में कृष्ण ने कहा और वो चली गई, और वैसे ही उनको भी गोपियों को भी कृष्ण ने कहा कि आप लोग वन जंगल देखने के लिए आई हैं, अब देख लिया आप लोग लौट जाइए। मैं भगवान हूं, शायद हमें दर्शन करने के लिए आई हैं, इसलिए लौट जाए। गोपियों ने जो सुंदर सा उत्तर दिया है उसको भी आप लोगों ने सुना। गोपियों ने कहा, इतना उपदेश आज तक हमको जीवन में जो मिला उसमें सबसे अच्छा उपदेश और उत्तम उपदेश आपने दिया, यह गुरु का कार्य है, इसलिए आप हमारे गुरु ठाकुर हैं। तो गुरु ठाकुर जी का कहना यह है कि भगवान और कृष्ण, भक्त और भगवान दोनों खड़े हों तो किसका सम्मान पहले होना चाहिए? गुरु का सम्मान हो करके तब फिर भगवान का सम्मान होना चाहिए, नहीं तो उसकी पूजा विफल हो जाती है। तो आप भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं और आपके मुख से निकले हुए वचन ही शास्त्र हैं, इसलिए आप ही का आदेश, शास्त्र का आदेश माने आप ही का आदेश है, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। पहले हम आपकी सेवा कर रहे हैं, इसके बाद में जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए यदि आप हम लोगों की पूजा सेवा नहीं लेते पहले और हमें घर में भेजते हैं तो आप पाप के अधिकारी हैं, पाप भोगने के, क्योंकि आप शास्त्रों का विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जो हमको शिक्षा दे रहे हैं और आप ही उस शिक्षा को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो आपने गीता सुनेंगे, गीता नाम की कोई चीज है उसमें आपने ये कहा है, ये जथान माम प्रपत्यंते ताम तथैव भजाम्यहम, हम जो जैसा हमारा भजन करता है मैं उसको उसी के अनुरूप में मैं उनका भजन करता हूं। तो हम जिस भावना से आपके पास में आई हैं भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, यदि उसी के अनुरूप आप हम लोगों का भजन नहीं करते हैं तो आप ही उसके भावी हमें दोष का, इसलिए जिस भावना से हम आई हैं उसी भावना से आपको ग्रहण करना होगा, नहीं तो आपकी बात झूठ हो जाएगी, आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह से गोपियों ने बहुत से बातें कही, अंत में कृष्ण हार गए, पराजित हो गए, गोपियों की जय हो गई। इसी तरह से वो देख रहे थे परोक्ष राजा ने, कहीं इसमें भी कृष्ण ने परोक्ष राज भी कहा, कृष्ण ने देखा कि हमारे सबसे ये श्रेष्ठ भक्त हैं, अभी तक उन्होंने सखाओं की पूजा की, अपने कंधे पर लेकर के चले उनकी सेवा की, मैया ने हाथ बांध दिया तो उनका हाथ बंध गया, अब ये गोपियों की सेवा करनी है, इसलिए गोपियों की सेवा करने के लिए यहां पर परोक्ष रूप कर सकते, ये सोच रहे थे कि इन गोपियों की मैं कैसे सेवा करूं, प्रसन्न करूं, हमारे लिए तो ये सब कुछ प्रत्याग नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तथापि मुझको चेष्टा करनी चाहिए इनको किस प्रकार से सुखी करूं। भागवत का यही एकमात्र संदेश है, और जो शास्त्र हैं वो उनमें ये लिखा है, भक्त लोग भगवान का की खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको चित्त को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, और भागवत का संदेश ये भगवान ही भक्तों की सेवा करते हैं और उनको खुश करने की चेष्टा करते हैं, भगवान भक्तों की खोज करते हैं, इसलिए यहां पर गोपियों के चित्त को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण ने उनका आवाहन किया था, इसलिए इन गोपियों को लौटा नहीं सके। अंत में इनके साथ में रास इत्यादि लीलाओं को करने लगे, अनुरूप ये जथान नाम प्रपद्यंते ताम तथे बोले, गोपियों ने उनको स्मरण करा दिया था, उनके साथ में करने लगे। तत्पश्चात गोपियों के दो प्रकार के समुदाय थे, एक था श्रीमती राधिका जी जैसे भाव वाले, और एक था चंद्रादी जैसे भाव वाले। जब उनके साथ में नृत्य करने लग गए तो उन गोपियों ने देखा जो समस्त गोपियों को छोड़कर के कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। सब गोपियों ने ऐसा ही देखा, कृष्ण केवल मेरे एक साथ ही और कोई नहीं, हमारे साथ में हमारे हाथों में हाथ लगाकर नृत्य कर रहे हैं और किसी के साथ में नहीं है। इनको बड़ा कुछ सौभाग्य मत हुआ, सौभाग्य का मत, ये कृष्ण केवल हमारे ही वशीभूत हैं। और श्रीमती राधिका जी जो थी उन्होंने देखा हमारे साथ भी नृत्य कर रहा है और यहां पर हमारी दृष्टि पड़ती है उन गोपियों के साथ भी नृत्य कर रहा है, सबके साथ भी नृत्य कर रहा है, इसलिए उनको हो गया मान। कृष्ण ने देखा ये अब रास नहीं होगा, इनको तो सौभाग्य मद हो गया और इनको हो गया मान। इसने कुछ सोच विचार कर उन्होंने वो अंतर ध्यान हो गए, जैसे कि उनका मद दूर हो जाए और इसका मान भी इनके मान को भी प्रसादन कर सकूं, प्रसन्न कर सकूं। इसलिए मैं एक श्लोक यहां पर पढ़ता हूं और इसी के थोड़ी सी व्याख्या करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अंतरहिते भगवती सैव ब्रजांगना तम अचक्षणा करिष्या करिष्या इव भूतपम्। यहां पर अंतरहिते भगवती सैव ब्रजांगना, अंतर्हित भगवती सैव ब्रजांगना, यहां का भी परोक्ष बात है, जरा सावधानी से सुनना, जिसको समझना है खूब सावधानी, अनेक तो समझ में नहीं आएगा। यहां लिखा भगवती सैव अंतर्हित, ऊपर का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण अकस्मा अंतर्हित होने पर ब्रजंगनाएं गोपिकाएं विरह में कातर हो, जैसे हाथियों का जिनपति, हथिनियों का जिनपति कहीं दूर को जाए तो जैसे हथिनियां बड़ी विलाप करने लगती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं, ऐसे ये गोपियां सब विलाप करने लगी और बड़ी दुखी हो गई। किंतु इसका अर्थ कुछ दूसरा ही है। ये इसका अर्थ कुछ दूसरा ही है, जिसको मान हुआ उसको छोड़ने का प्रश्न नहीं है, मान जिसको होगा वो जिसके प्रति मान होता है तो मान होने वाला तो अप्रसन्न होगा और छोड़ करके चला जाएगा ना, जिसको मान नहीं हुआ वो छोड़ करके चला जाएगा, कौन छोड़ करके जाना चाहिए। श्रीमती राधिका जी को जन्म मान हुआ तो जिसके प्रति मान हुआ है उन दोनों के प्रति वो छोड़ करके चली जाएंगे, इसलिए श्रीमती राधिका सबसे पहले कृष्ण को छोड़ा और उसके बाद में जिसके लिए कृष्ण उनके साथ में है उनको भी छोड़ दिया और छोड़ करके साथ साथ वहां से लोगों का ध्यान कृष्ण पर था। सब शक्तियों का गोपियों का ध्यान किस पर था? कृष्ण पर। किंतु राधिका जी का ध्यान था कृष्ण के प्रति, तो उनके प्रति मान हुआ कि हमको और उनको सबको बराबर समझते हैं इसलिए मान हुआ, इसलिए कृष्ण के प्रति मुख हटा करके और वो दूसरे तक चली गई और अंत ध्यान हो गई, किसी कुंज में प्रवेश कर गई। इधर में कृष्ण ने देखा कि जिसके लिए आराश हो रहा वो राशन अब क्या किसके लिए करेंगे, और दूसरा जो पक्ष था जिनको कुछ अभिमान था, क्या था? सौभाग्य मत मत था, उसका मत को उतारना था। कैसे करेगा? यदि मैं उस प्रियतमा को लेकर के यदि जाऊं, ये लोग देखेंगे जैसे हम लोगों को आदर उतना नहीं करता जितना उनका उनका सौभाग्य मत अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए यहां पर श्रीमती राधिका का ही अंत ध्यान सबसे पहले है, वो वहां से अलग चली गई, कृष्ण ने उनके पीछे पीछे चलना आरंभ कर दिया। बंसी में उन्होंने राधे राधे सब कुछ जान दिया और उनके पीछे चलकर और इधर गोपियां अत्यंत दुखी होकर के खोजने लगी कृष्ण को, किंतु श्रीमती राधिका आगे चली गई है किसी को पता नहीं। इसी को ही श्लोक में कर रहे हैं अंतर्हिते भगवती, भगवती माने क्या? नहीं नहीं भगवती ये कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर, भगवान जो कृष्ण है उनके अंतर्ध्यान होने, क्योंकि एक शब्द है सशैव। सशैव माने क्या? सह माने साथ, साय एव माने क्या? सामाने स्त्रीलिंग सा, सामाने राधिका जी है, एव माने उनके साथ ही भगवती अंतर्हिते। जब वो अंतर्ध्यान हो गई सा, तो सह कृष्ण भी उनके साथ वहां से अदृश्य हो गए। कहां दृश्य हो गए? उनके साथ ही साथ में पीछे पीछे ये भी चले। कैसे निकल गए किसी को राधा जी चली गई मालूम नहीं हुआ, वैसे कृष्ण जब अंतर ध्यान गए उनके साथ में साय उनके साथ ही। अतः ये भी सकते हैं कि कृष्ण ये राधिका के साथ में ही कृष्ण अंतर ध्यान, क्यों सब सखियां खोज रही हैं, देखो तो कृष्ण के चरणों चरण कमलों को देखा बहुत सुंदर, उसमें वज्र ध्वजा अंकुश कलश ये प्रोमिनेंट रूप में बहुत प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे। देखा ये वही कृष्ण का चरण चिन्ह है, क्योंकि सभी गोपियां कृष्ण के चरण चिन्हों को जानती हैं, राधा जी के चरण चिन्हों को सभी नहीं जानते। कौन जानती है? जो उनके तलों में पैर में तिल लगाती हैं, सेवा करती हैं, उनके साथ में रहती हैं, वो जानती हैं। इसलिए राधा पक्षी जो गोपियां हैं उनके पैरों को जानती हैं। उस समय में वो भी देखा जिस वो दूसरे वालों ने देखा, विपक्ष वालों ने, तटस्थ वालों ने, सहित वालों ने, ये कृष्ण ही अकेले गए हैं राधा जी के तरफ में ध्यान दें, किंतु इन लोगों ने देखा कि राधा जी कहां गई, हमारी प्रिय सखी कहां गई और कृष्ण भी कहां गए, उन दोनों को खोज रहे। थोड़ी देर जाने पर कृष्ण का चरण जब चिन्ह मिला शरीर रूप में खोलते हुए आगे बढ़ी। थोड़ी देर जाने के बाद में जब देखा एक और किसी किशोरी की कई पहले चरण है, चरण बहुत कोमल है और कृष्ण से कुछ छोटे हैं, कुछ पतले से हैं, किंतु बहुत ही सुंदर है। उसको देखते ही उनकी पक्ष वाली जो गोपियां थी उन्होंने देखा कृष्ण के बाएं चरण में वो चिन्ह है, इसके दाहिने चरण में वो चिन्ह है। उन्होंने देखा कि कृष्ण का जहां बाया चिन्ह है उस सखी का वो दाहिना चरण उसके साथ में है। देखो तो कैसे अद्भुत आश्चर्य की बात, ये बाया चिन्ह पैर और दाहिना पैर ये दोनों, उस सखी का दाहिना उसका दाहिना पैर का जो चरण चिन्ह है प्राय सभी कुछ मिलता है, थोड़ा सा अंतर। बस ये सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई, आधार बहुत प्रसन्न हो गई और निश्चिंत हो गई, बड़ी खुशी हुई कि आज और सबको छोड़ करके और हमारे सखी के साथ में गए हैं, इनका तदात्म्य भाव हो गया, मैंने ये हमारे साथी हैं। राधिका जी के सुख में सुखी और दुख में दुखी, इसलिए इनको बहुत ही आनंद हुआ, मानो कृष्ण ही मिल गए हम लोगों के साथ में, राधा जी को मिल गए। इसको देख करके जो विपक्षवादी है बड़ी विघ्न हो गई, बहुत उद्विग्न, क्यों विघ्न हो गई, वो तो जा रही है कृष्ण के तरफ में मिलने के लिए, किंतु देखा है कि सब हमको छोड़ करके एक दूसरी गोपी कौन हम लोगों में से आई, अराधको नूनम भगवान हरीश्वर जन्मो बिहार गोविंद प्रीतम आने अने अराधितो कहते हाँ। बड़े दुख की बात है कि ये जो गोपी गई ये सबसे भगवान नारायण की आराधना की है, जिसकी कृपा से ये कृष्ण हम सबको छोड़कर इसके साथ में चले गए, हाय हाय तथा एकदम बहुत दुखी हो। और इनके जो पक्षवादी जो पद्मा और चंद्रा ये थी सत्या इत्यादि भी बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि उनका उठा हो गया और राधिका के लिए तटस्थ और इनके लिए जो सुदूर भद्रा नाम की सखी थी सांत्वना दे रही गई। देखो तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, इतने प्रिय सखी और इनको छोड़कर के दूसरी सखी को लेकर के चले गए, कुछ कुछ सहानुभूति प्रकाश करने लगे और इनकी जो सखियां थी विपक्ष वो सभी स्तब्ध हो गई। और दूसरी वाली जो राजा जी की सखियां थी वो बड़ी थोड़ी सी प्रसन्न हो गई। इसी तरह से अपने अभिव्यक्ति जो यहां करती है उसे साफ ये सब प्रतीत होता है, चारों प्रकार के गोपियों ने अपने अपने भावों को उजागर किया और जब थोड़ी सी दूर आगे और बढ़ी तो देखा क्या, पैर जो दिख रहा था किशोरी का वो नहीं, और ये देख करके विपक्ष वाली की और दुखी हो गई और ये सुखी हो गई, इसलिए आज हमारी सुकुमार की किशोरी जो है वो कितना चलेगी इस वन जंगल में, और भी रात के समय उन्होंने कहा होगा कि हम हमारे सुकुमार चरण कमल में चल नहीं सकती, इसलिए उनको ऊपर कंधे पर उठा लिया होगा। देखो तो ये काम ही देखो तो यहां पर उतार करके इनकी श्रृंगार के लिए श्रृंगार रखने यहां पर पुष्प गिरे हुए हैं और जिस लता से उसने चयन किया है वो लता में अब फूल नहीं है, बहुत कम फूल है, नीचे वाले फूल नहीं ऊपर वाले फूल है, और वहां पर कृष्ण की एड़ी नहीं दिखाई दे रही, उनके केवल पंजों की छाप दिखाई, इसका मतलब क्या जो एड़ी उठाकर और उसको पकड़ करके ऊंचा में खड़ा होकर के ये फूल बड़े कष्ट से चयन कर रहा है, क्यों काम ही है ना इसलिए। और इसके बाद यहां पर श्रृंगार किया, देखो उसके बैठने का चिन्ह है और श्रृंगार का भी चिन्ह है, ये सब किंतु है नहीं, कहां गए आगे और स्वागत चले। अब देखा जे केवल श्रृंगार पर से थोड़ी सी दूर आने पर देखा जे सारे को गोपी तो यही पर पड़ी हुई रो रही है, ये कौन है, देखा जा रही ये तो श्रीमती राधिका। अब जो विपक्षी की थी उनको सहानुभूति हुई, अच्छा हुआ कि इसको भी छोड़ करके वो चला गया, नहीं तो बड़े हमारी सखी का बड़ा अपमान होता, और इनके पक्ष वाली थी और कुछ दुखी हो गई, वो इसको भी छोड़ करके चले गए, क्यों चले गए, श्रीमती जी ये सोचा है, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ त्याग किया गया त्याग किया है, और उनको सब छोड़ करके अकेले में इनके साथ में नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चल नहीं सकती। कृष्ण ने देखा यदि वो आ जाएंगे तो इससे ईर्ष्या करेगी, फिर इनमें विरोध पैदा हो जाएगा और कभी सुलहनामा नहीं होगा, फिर राष्ट्रीय नहीं होगा। इन्होंने कहा जल्दी जल्दी चलिए, किंतु उन्होंने कहा कि मैं तब चल नहीं सकती, कहते हमारे कंधे पर बैठो, कंधे पर बैठने पर ऐसा प्रेम का इनका भाव उदित हुआ जो कृष्ण थोड़ी दूर हट गए, पार्टी में खड़े हैं उनको देख नहीं सके, ऐसा एक प्रेम वैचित्र हो गया, निकट उनकी गोदी में रहने पर नहीं देख पाती हैं तो पास में रहने से क्या देखेंगे, इसलिए कृष्ण को नहीं देख सके। कृष्ण ने देखा एकदम गृह में मतवारा होकर के आना रमन श्रेष्ठ वासुकाश महाभुज कृपणाया जा सकते सखे दर्शय संधि में, इस प्रकार से विराम कर इन्हें दूसरे वालों की भी सहानुभूति हो गई, अब सब लोगों ने मिलकर के इनको उठाया, पानी के छींटे दिए और इसके बाद में उसको लेकर के किसी प्रकार से पूछा जैसे ये कैसे गति हुई, तो वो क्या करती कुछ बहाना बना करके दूर करके कुछ अपने भावों को छिपा करके बोली, हमको ऐसा अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्रिया हूं, इसलिए हमको भी छोड़ करके ये चले गए, मुझको अभिमान हो गया इसलिए इनके कंधे पर बैठने की हमने चेष्टा की इसलिए हमें छोड़ करके चले गए, असल जो बात थी उन्होंने उसको छिपा दिया। यही भागवत का रस है, अपरोक्ष रूप में ये सब रसों का वर्णन किया गया है। कृष्ण राधा जी को खोजने के लिए जा रहे हैं, यही भागवत का संदेश है। आज यहीं तक रहे तो समय मिलने तक और आगे की व्याख्या करूं, आगे कीर्तन के साथ में इसकी समाप्ति करें। गौ प्रमानंदे।